أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دو خطبوں سے جو غلامین کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اس کا تعلق معاشرتی برائیوں سے ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا معاشرتی برائیاں ماحول میں جب اونچی سطح تک پہنچتی ہیں تو ان کا درمیان میں ایسے خطوں سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو ان برائیوں سے آ رہی ہوں. جب سطح بلند ہوتی ہے تو پھر اچھل اچھل کر پانی کناروں سے ایسی جگہ میں بھی گرتا ہے جو اس سے پہلے پانی سے محفوظ تھی. اسی طرح درجہ حرارت کا حال ہے. یہ قدرتی عوامل ہیں جن کے خلاف بیدار مغزی سے ہوشیار رہتے ہوئے انسدادی کاروائیاں کرتے رہنا چاہیے. معاشرتی برائیاں جو آج دنیا میں پھیل رہی ہیں یہ یوں تو بہت کثرت سے ہیں اور ہر ایک کا نام لے کر اس کا تفصیلی ذکر یہاں نہیں کیا جا سکتا. مشرق میں بھی یہ برائیاں ہیں اور مغرب میں بھی, لیکن نوعیتیں حالات کے مطابق بدل جاتی ہیں. بعض چیزیں جو یہاں برائیاں سمجھی جاتی ہیں وہ وہاں نسبتاً کم برائی سمجھی جاتی ہیں, بعض چیزیں جو وہاں برائیاں سمجھی جاتی ہیں یہاں کوئی بھی ان چیزوں کو برائی کے طور پر نہیں دیکھتا. مثلاً جھوٹ ہے, ابھی تک اس معاشرے میں جھوٹ کے خلاف ایک نفرت موجود ہے اور جھوٹ بالعموم اس معاشرے میں نہیں بولا جاتا. تو تیسری دنیا کے ممالک میں, جن میں بدقسمتی سے ہندوستان اور پاکستان بھی شامل ہیں, جھوٹ ایک روزمرہ کی عادت بن چکا ہے, ایک ایسی روزمرہ کی عادت جس کو کوئی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا, گویا کہ ایک معاشرے کا طبی حصہ بن چکا ہے. اس کے برعکس بعض ایسی برائیاں ہیں جو یہاں چونکہ اس کثرت سے پیدا ہو چکی ہیں اور بہت آگے بڑھ گئی ہیں کہ ان کو اب برائیاں سمجھا نہیں جاتا. جنسی بے راہ روی ہے اور مرد اور عورت کا بے تکلف اور بے روک ٹوک اختلاط ہے, اس سے ملتی جلتی, اس سے تعلق رکھنے والی اور بہت سی باتیں ہیں, شراب نوشی ہے, یہ سارے امور ایسے ہیں جو اس معاشرے میں, جو مغرب کا معاشرہ کہلاتا ہے, اس میں برائی کے طور پر نہ سمجھے جاتے ہیں, یہ باتیں نہ برائی سمجھی جاتی ہیں نہ ان کے خلاف کسی تحریک کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برائیاں بڑی دیر سے اس معاشرے میں قائم ہو کر آگے بچے دے چکی ہیں, اور ان برائیوں کے بچے ان برائیوں سے بہت زیادہ خوفناک صورتیں اختیار کر چکے ہیں. اس لیے ان کو وہ انتہائی صورت برائی کے طور پر دکھائی دیتی ہے جو ان برائیوں کی آخری شکلیں ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ابھی نفوذ پکڑ رہی ہیں, اس لیے ابھی تک باوجود اس کے کہ اب حالت بعض علاقوں میں بہت خراب ہو چکی ہے, پھر بھی یہ برائیاں ہی سمجھی جاتی ہیں. سب سے اہم بات اس سلسلے میں یہ بتانے والی ہے کہ جماعت احمدیہ کو ان برائیوں کے انسداد کے لیے قائم کیا گیا ہے, اور جب تک ہم اس معاملے میں ایک جارحانہ رویہ اختیار نہ کریں ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا نہیں سکتے. جارحانہ رویہ اختیار کرنے کے متعلق میں نے اس سے پہلے ایک دو سال قبل بعض خطبوں میں جماعت کو نصیحت کی تھی کہ برائیوں کے خلاف جہاد صرف اندرونی طور پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ماحول کی برائیاں دور کرنے کی کوشش بھی ضروری ہے. اگر آپ ماحول کی برائیوں سے غافل ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ غیر ان بیماریوں میں مبتلا ہیں تو یہ طریق عمل خودکشی کے مترادف ہوگا. جب تک ہم اس نظر سے معاشرے کی برائیوں کو نہ دیکھیں کہ یہ بدیاں دور کرنا ہمارا کام ہے, اپنوں میں ہوں یا غیروں میں ہیں, ہم اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم نے برائیوں کو دور کرنا ہے, اس وقت تک ان بدیوں سے ہم خود بھی محفوظ نہیں رہ سکتے. اس مضمون پر میں احادیث نبوی کی روشنی میں پہلے تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں. آج میں خاص طور پر بعض برائیوں کا ذکر کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک میرا علم ہے یہ برائیاں احمدی معاشرے میں بھی نفوذ پکڑ گئی ہیں, نفوذ پا چکی ہیں اور صورت کے ساتھ داخل ہو رہی ہیں. جو خبریں پاکستان سے ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ شہروں میں تو اس پہلو سے بعض جگہ یورپ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے, بعض امیر حلقوں میں یہاں تک بات آگے بڑھ گئی ہے کہ باقی ملک جن کو برائیاں نہیں سمجھتا बुराइयां समझता है, उन हलकों में अब वो बुराइयों के तौर पर देखी नहीं जाती, क्योंकि उनके साथ उन बुराइयों से मेल जोल हो गया है, बेतकल्लुफी हो गई है, अब वो गैर दिखाई नहीं देती, वो मुआशरे का जुज बनती चली जा रही है। इस पहलू से अहमदी हलकों में खसूसियत से फिक्र करनी चाहिए कि हम कब तक इन जजीरों की सूरत में, इन इलाकों में रहकर इनसे महफूज रह सकते हैं। जब तक, जैसा कि मैंने कहा है, जारहाना इकदाम ना करें और तमाम माशरे में बतौर मुजक्किर इन बुराइयों के खिलाफ आम नसीहत ना शुरू कर दें, उस वक्त तक दर हकीकत हम अपने आप को इन बदियों से बचा नहीं सकते। हम ये नहीं कर रहे, जहाँ तक मेरा इल्म है, जमात अहमदिया की कोशिशें जमात अहमदिया के दायरे तक ही महदूद हैं, लेकिन गैर ये कर रहे हैं और बिल इरादा स्कीमें बनाकर जमात अहमदिया के नौजवानों में बदियाँ दाखिल करने की कोशिशें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा रब्बा को इस साजिश का निशाना बनाया जा रहा है। जहाँ तक मुझे इत्तलाएँ मिलती हैं, और ये इत्तलाएँ सिर्फ जमात अहमदिया की तरफ से नहीं बल्कि बाहर से भी मिलती हैं, जब मैं रब्बा पाकिस्तान से रुख्सत होकर यहाँ आया, उसके बाद बाकायदा साजिश के तौर पर बड़ी सतह पर ऐसी स्कीमें तैयार की गईं कि जिनके नतीजे में रब्बा में बाज़ बदियां दाखिल करने की अमलन कोशिश शुरू हो गई। क्योंकि बरवक्त हमें इन बातों का इल्म हो गया, इसलिए दिफाई कोशिशें भी साथ जारी रहीं, लेकिन जो लोग मुनज़्ज़म तरीक पर और पैसे की मदद के साथ और हुकूमत की सरपरस्ती में इस किस्म के इकदामात करते हैं, उनके ज़राए बहुत वसी होते हैं, और चूंकि बाज़ बुराइयाँ ऐसी हैं जो तबी कमज़ोरी के तौर पर बड़ी जल्दी इंसानी आदतों में राह पा जाती हैं, इसलिए जहाँ तक ज़ाहरी मुकाबले का ताल्लुक है, जिसे कहते हैं ऑड्स हमारे खिलाफ हैं और उनको इस मामले में बहुत सी फौकियत हासिल है, नेकी पैदा करना अपहिल टास्क कहलाता है, यानी जिस तरह ऊंची सतह की तरफ चढ़ना और कोशिश करना बहुत मेहनत चाहता है और हिम्मत चाहता है और सब्र चाहता है, उसके बरक्स नीचे की तरफ बहना एक तबी अमर है और उसके लिए किसी गैर मामूली जिद्दोजहद की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर मंसूबे बनाकर नीचे की तरफ रुख करने की कोशिश की जाए तो जाहिर बात है कि तमाम अवामिल इस कोशिश को कामयाब बनाने में मददगार होंगे। बस इस पहलू से हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल हमने ये करना है और हर कीमत पर अपने नौजवानों को इन बदियों से बचाने की कोशिश करनी है। जो बदियाँ बिलखसूस इस वक्त मुझे राह पाती हुई दिखाई देती हैं, उनमें आवारगी सबसे पहली चीज़ है। आवारगी से मुराद है अपने जहन को बाद अयाशियों के लिए आमादा कर लेना और इजाज़त दे देना और फिर उन अयाशियों की तलाश में सरगर्दां फिरना। हमारे मुल्क में ये बीमारी खसूसियत के साथ पाई जाती है, इसलिए कि वहाँ बद इरादे के बावजूद अयाशी के ज़रिए इतनी आसानी से मुयस्सर नहीं है। मगरबी ममालिक में बद इरादे के साथ ही अयाशी के ज़राए भी निस्बतन आसानी से मुयस्सर आ जाते हैं, इसलिए जिस चीज़ को हम अपनी ज़ुबान में आवारगी समझते हैं वो वहाँ और माने रखती है और यहाँ और माने रखती है। वहाँ आवारगी इस तरह दिखाई देगी कि नौजवानों की टोलियाँ आपको बेमकसद बेवजह बाजारों में और पब्लिक जगहों में घूमती फिरती दिखाई देंगी, और बावजूद इसके कि उनका कोई ख़ास इरादा कहीं डाका डालने का नहीं होता, किसी लड़की को छेड़ने का नहीं होता, लेकिन एक अंदरूनी बेचैनी उनके अंदर दिखाई देती है। वो चाहते हैं कि कुछ उनको मिले, वो चाहते हैं किसी तरह वो कोई तस्कीन हासिल करें, इसलिए वो आपस में खुशगप्पियाँ करते हुए एक दूसरे को बाज़ ऐसे दिलचस्प फर्जी या हकीकी वाकयात सुनाते हुए जिनसे तबीयतें ख़ास तरफ मैलान इख्तियार कर लें, बास किस्म की ख्वाहिशें बेदार हों और ज़्यादा तबीयत में जोश मारने लगें, ऐसे किस्से करते हुए वो फिरते रहते हैं। और जब ये ग्रोह ज़्यादा कुव्वत पकड़ जाते हैं फिर दूसरे वाकयात भी शुरू हो जाते हैं, फिर आवाज़ें कसना गुजरती हुई बच्चियों के ऊपर, या इससे बढ़कर बाद और गलत मंसूबे बनाकर उन पर अमल दरामद भी शुरू हो जाता है। तो आवारगी एक ऐसी चीज़ है जो एक बेदार मग़ज़ इंसान को साफ सड़कों पर खुली खुली दिखाई दे देती है, सवाए इसके कि कोई अपनी आँखें बंद करे इरादतन। ये ऐसी बीमारी नहीं है जो दिखाई ना दे और समझ ना आ सके, अगरचे इस पर मुय्यन हाथ नहीं डाला जा सकता। अमूर आमा ये नहीं कह सकती कि आप यहाँ क्यों फिर रहे हैं, लड़के कहेंगे हाँ हम फिर रहे हैं आपको इससे क्या, मगर समझने वाला इंसान समझता है कि माशरे में एक बेचैनी पैदा हो गई है, एक लज्जत की तलाश है, एक तस्कीन की जस्तजू लग गई है जो इन नौजवानों को मैसर नहीं आ रही। इसके बाद इनमें से कुछ तबके फिर मुय्यन लज्जतों की तलाश में अलग अलग या दो दो या तीन तीन की सूरत में घूमते फिरते हैं, बाज़ जगह अड्डे बनाते हैं, और अमूमन ये अड्डे आपको बाजारों में दिखाई देंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बाजारों के खिलाफ नफरत का इजहार फरमाया वो दरअसल इसी वजह से है। आवारगी का बाजारों से एक आम ताल्लुक है और गहरा ताल्लुक है, चुनाचे जनरल मर्चेंट्स की दुकानें हैं या वीडियोस बेचने वाली या कैसेट्स बेचने वाली दुकानें हैं या तस्वीरें उतारने वाली दुकानें हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, इन सब जगहों में फिर अमूमन ये लोग राह पाकर वहाँ मौके की तलाश में रहते हैं ताकि कोई और बिगड़ा हुआ मिजाज अगर वहाँ हाथ आ जाए तो उसके ज़रिए फिर अपने बद ताल्लुकात को आगे बढ़ाएं। ये चीज़ भी ऐसी है जो शायद इस सतह पर मुय्यन जुर्म के तौर पर नहीं पकड़ी जा सकती, लेकिन जो मुंतज़मीन हैं जिनके सुपुर्द मुआशरे की तरबियत है वो अगर आँखें खोल कर इन बातों को देखें तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ें मख्फी फिरती हैं। सरेआम आपको ये बातें होती दिखाई देंगी, आपको मालूम होगा कि बाज़ बच्चियां भी बेएहतियाती के साथ बाज़ दुकानों में कसरत से जाती हैं और बेवजह वहाँ खड़ी हो जाती हैं, आपको मालूम होगा कि बाज़ लोग बाज़ किस्म की फिल्में ख़रीदने के लिए या किराए पर लेने के लिए बाज़ ऑडियो वीडियो दुकानों पर कसरत से जाते हैं, और फिर किसी जगह उन्होंने अड्डे भी बनाए हुए होंगे जहाँ जाकर वो उनको देखते हैं। इसी तरह और बहुत सी बातें वो सतह से नीचे चलती हैं लेकिन उनकी इलामतें सतह से बाहर फिर रही होती हैं, और ये हो नहीं सकता कि एक समझदार इंसान इन बातों को देखकर मालूम न कर सके कि क्या हो रहा है। जब इससे नज़र गाफिल हो जाती है तो फिर ये बीमारियां और रुख अख्तियार कर लेती हैं। ऐसे लोगों में ड्रग एडिक्शन के फैलाने के अहतमाल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। अगर तो तभी तौर पर ये अवामिल आगे बढ़ रहे हों तो इसमें वक्त लगता है और तेज़ी के साथ मुआशरा ख़राब नहीं होता, لیکن اگر اس صورت حال پر بعض فتنہ پرداز گہری نظر رکھتے ہوئے ان برائیوں کو بیرونی مدد دے کر آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو پھر خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ معاشرہ بڑی تیزی سے ان بدیوں کے شکار ہو جائے۔ چنانچہ چند سال پہلے بھی میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ یہ منصوبہ ایک جگہ بنایا گیا کہ ربا کے نوجوانوں کو نشہ آور دواؤں میں قادی بنا دیا جائے، اور اس کے لیے ان کو شروع میں مفت ایسی چیزیں مہیا کی جائیں، پھر جب وہ ان کے عادی بن جائیں پھر ان سے رفتہ رفتہ یہ حسن سلوک جس کو وہ سمجھتے ہیں اس کا ہاتھ کھینچا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ پیسے مہیا کریں ان چیزوں کے لیے۔ پھر اس کے نتیجے میں چوریاں شروع ہوں گی، ڈاکے شروع ہوں گے، ایسے گروہ بن جائیں گے جو ہر قیمت پر روپیہ حاصل کر کے اپنی اس عادت کو تسکین دینے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ان اطلاعوں کی توثیق بعض دفعہ اس طرح بھی ہوئی کہ بعض خواتین نے مجھے خط لکھا کہ ہمارا بچہ پہلے تو بے باک ہوا تھا، اب حالت یہ ہے کہ گھر کے پیسے چوری نہیں بلکہ زبردستی چھین کے لے کے جاتا ہے، اور بعض دفعہ چاقو دکھا کر بھی جب مجھے اکیلا پاتا ہے تو ڈراتا ہے کہ میں تم پر حملہ کر دوں گا یا تم سے سختی کروں گا جس قسم کی بھی اسے ممکن ہے، مگر ہر طرح تم نے مجھے پیسے ضرور مہیا کرنے۔ ایسی مائیں بھی ہیں جو ایسی اطلاع دے دیتی ہیں، لیکن بہت سی ایسی مائیں بھی ہوں گی جو اطلاع نہیں دیتی، جو سمجھتی ہیں کہ ہماری عزت پر حرف آئے گا یا اپنے بچوں کی محبت میں اندھی ہو چکی ہوتی ہیں اور ان پر وہ پردے ڈالتی ہیں۔ بعض مائیں ہیں جو بچوں کے باپ کو بتا دیتی ہیں، بعض ان سے بھی مخفی رکھتی ہیں یہاں تک کہ بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال جب ان باتوں کی اطلاعیں ملنی شروع ہوئیں تو جس حد تک بھی ممکن تھا ان کے خلاف انتقادی تدابیر اختیار کی گئی، لیکن اس وقت جو انسدادی تدابیر میرے ذہن میں ہیں ان کا تعلق پکڑ دھکڑ سے نہیں ہے۔ میرے ذہن میں جو امور عامہ کا تصور ہے، یا امور عامہ سے مراد صرف نظارت امور عامہ نہیں، ہر جماعت میں امور عامہ کا شعبہ قائم ہے، وہ سیکرٹری جن کا ان کاموں سے تعلق ہے وہ سب اس وقت میرے مخاطب ہیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ یہ بیماریاں بڑھ جائیں اور زر رساں اس حد تک ہو جائیں کہ ساری سوسائٹی ان کا دکھ محسوس کرنے لگے۔ جو ملوث ہیں وہ تو تکلیف اٹھائیں گے، بہرحال جو ماحول ہے بعض دفعہ وہ بھی متاثر ہو کر تکلیف اٹھانے لگ جاتا ہے۔ اس وقت پہ اچانک بعض جگہ بیداری پیدا ہوتی ہے اور کہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے، ان کو جماعت سے نکالا جائے، ان کو پولیس میں دیا جائے، اور کئی قسم کی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، مگر وہ وقت دراصل اصلاح کا وقت نہیں ہوا کرتا۔ اس وقت معاملہ ہاتھ سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اسلام کا جو تصور قرآن کریم نے پیش کیا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت میں عملی نمونے کے طور پر دکھایا، وہ عام دنیا کے مواخذے کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں برائیاں ابھی جڑ بھی نہیں پکڑ چکی ہوتی، کوشش کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے خلاف انسدادی کارروائی شروع ہو جاتی، اور تمام تذکیر کا نظام جو قرآن کریم میں ملتا ہے اور جس کو ہم نے سنت کی شکل میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جاری دیکھا ہے، وہاں آپ کو پھل کا انتظار کرتے ہوئے لوگ دکھائی نہیں دیں گے، یعنی کڑوے پھل کا انتظار کرتے ہوئے لوگ دکھائی نہیں دیں گے۔ آپ کو ایسے مدبر دکھائی دیں گے جو یہ نظر رکھتے ہیں کہ بیج کہاں گرا ہے اور وہ کون سی زمین ہے جو اس کو नशोनुमा देने के लिए आमादा दिखाई देती है और वहां से उसकी बेइज्जती की जाती है। सबसे पहले जैसा कि मैंने बयान किया था, ये बुराइयां नीयत पर हमला करती हैं और पहले नीयत ही बिगड़ा करती हैं। चुनांचे हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुतनब्बे फरमाया कि सबसे पहले अपनी नीयतों की फिक्र करो, अगर तुम्हारी नीयतें बदल गईं तो फिर मामले को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कई किस्म की हसीन खूबसूरत वाज़े मिसालें देकर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि दिल जब एक तरफ रुख करने का फैसला कर लिया करता है तो जाहिर में उसका रुख, जिस्म का रुख किसी और तरफ भी दिखाई दे तब भी बिल आखिर बात वहीं पहुंचेगी जहां दिल ने फैसला किया हुआ है। इसलिए एक बात सबसे पहले खोल कर हमें अपने पेश नज़र रखनी चाहिए कि दो ही रुख हैं जिनको हमने अपने लिए अख्तियार करना है। एक वो जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख है, जिसके आप काफिला सालार हैं, जिनके पीछे कदम बढ़ाते हुए हमने आगे खैरात की तरफ बढ़ना है, और एक वो रुख है जो दुनिया परस्ती का रुख है। इसलिए जिस मुआशरे में नीयतें दुनिया परस्ती की तरफ मायल हो जाएं, वहीं से खराबी का आगाज शुरू हो जाएगा। वो बिलाखिर वहीं पहुंचेंगे जहां इससे पहले दुनिया परस्त लोग पहुंचते रहे हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस मामले में फरमाते हैं, हम हुए खैर उमम, तुझसे ही है खैर रसूल, तेरे बढ़ने से कदम आगे बढ़ाया हमने। बस अगर रुख हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब रहे तो लाजमन हर कदम नेकी की तरफ उठेगा, बुराइयां होते हुए भी इस सफ़र के दौरान बुराइयां झड़नी शुरू हो जाएंगी, नेकियों से आड़ी होते हुए भी हर मंजिल पर आप अपनी जो अपने दामन को पहले से ज़्यादा नेकियों से मुज़य्यन और मुरस्सा पाएंगे। बस रुख की तरफ तवज्जो देना बहुत ही अहम काम है। ऐसे लोगों की नीयतें दुरुस्त करना और मशवरे और मोहब्बत के ज़रिए और रहनुमाई के ज़रिए इनको समझाना, यहाँ से दरअसल हमारा जहाज शुरू होता है। इंतज़ार करते रहना कि जुर्म हद से बढ़कर एक भयानक शक्ल इख्तियार करे, फिर उस पर इंसदादी कार्रवाइयाँ तो हो नहीं सकती, उस ताज़ीरी कार्रवाइयाँ शुरू की जाएं, ये हमारा काम नहीं है, ना हमारा ये मसलक है। हम नसीहत करने वालों की जमात हैं और नसीहत करने वाली जमात को कुछ फोकियत, दूसरों पर फोकियत भी हासिल होती है, कुछ उसकी कमज़ोरियाँ भी होती हैं। नसीहत हर मंजिल पर यकसां असर नहीं किया करती। नसीहत चूँकि ज़्यादातर इंसदादी कार्रवाई से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए बीमारी अभी आगाज़ में हो तो नसीहत को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रसूख हासिल होता है, बहुत ज़्यादा क़ुव्वत हासिल होती है, और जब बढ़ जाती है तो जितनी बीमारी बढ़ती है उतनी नसीहत निस्बतन कमज़ोर असर दिखाने लगती है। बस बद हो जाने वाले लोगों को आप नेकी की तरफ बुलाएंगे तो बहुत कम असर पड़ेगा, लेकिन वो जो बदी की तरफ रुख करने का फैसला करते हैं उनको उस वक्त समझाना और रोक लेना ये निस्बतन बहुत आसान है। इसलिए शुरू से ही इन उमूर की तरफ तवज्जो ज़रूरी है, और फिर उस तरीक पर तवज्जो चाहिए जिसको जो तरीक कुरान करीम ने बयान फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, फिर फरमाया इदफा बिल्लती है आसन, फिर फरमाया इदफा बिल्लती है आसन सय्या, कि देखो हसनात नेकियों को खा जा, हसनात बदियों को दूर कर दिया करती। फिर फरमाया नेकियों के ज़रिए मुकाबला करो, फिर फरमाया नेकियों के ज़रिए बदियों का मुकाबला करो। हसनात से क्या मुराद है, ये एक बहुत ही हसीन लफ्ज़ है और बहुत ही वसी माने रखता है। इस मज़मून में सबसे पहले तो ये बात दाखिल है कि आप बदियों का मुकाबला दृष्टि और सख्ती से नहीं कर सकते बल्कि हुस्न के साथ कर सकते हैं। आपके अंदर कशिश होगी तो बदियों का मुकाबला कर सकेंगे, आपके अंदर अगर तेजी और मिजाज में सख्ती होगी, आपके आपके मिजाज में अगर तेजी और सख्ती होगी और खुशूनत पाई जाएगी तो आप दर हकीकत मुजक्किर बनने के अहल नहीं रहते। इसलिए जब आप इन मुआशरती बदियों को देखते हैं तो सबसे पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करें और अपनी नीयत में हुस्न पैदा करें और उन लोगों का दर्द महसूस करें जो बुराइयों का शिकार हैं। उन लोगों के खिलाफ अगर नफरत दिल में पैदा होती है उस नफरत को दबाएं और अपनी इसलाह की तरफ मुतवज्जे हों। अपना ज़हन अपने दिमाग के महदूद दायरे से निकाल कर दूसरे के दिमाग के दायरे में दाखिल करने की कोशिश करें और सोचें कि वो क्यों ये कर रहा है, क्या अवामिल हैं जिसने इन चीज़ों को इन बातों पर उसको मजबूर कर दिया है। फिर हिकमत के साथ रफ्ता रफ्ता हुस्न देकर उसकी बदियों के इजाले की कोशिश करें। ये कैसे हो सकता है इसकी मिसालें मैं आगे तफसील से आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज़ जो मैं बयान कर रहा हूँ वो ये है कि जब आप किसी चीज़ को पैदा होते देखते हैं तो लाजिम है कि उसके अवामिल पर गौर करें कि क्यों ऐसा हो रहा है। रब्बा में मैं कायद खुदामुल अहमदिया के तौर पर भी रहा हूँ, मुख्तलिफ जमाती खिदमतों पर मामूर रहा हूँ और वक्फ जदीद से ताल्लुक़ की वजह से सारे पाकिस्तान के देहात से भी इस्लाही रंग में मेरा एक ताल्लुक़ रहा है। इसलिए अपने तजर्बे की रोशनी में मैं बाज़ बातें आपके सामने रखता हूँ। कई किस्म के लोग मुझे मिले हैं इस काम के दौरान। बाद लोग हैं वो कहते हैं देखो जी यहाँ आवारगी फैल गई है, लड़के इस तरह फिर रहे हैं और उनकी तबीयत में बड़ा गुस्सा और इश्तियाल होता है, क्या कर रही है जमात, क्या हाल हो गया सबका, ये नस्लें तबाह हो गई हैं और अंजुमन में कुछ नहीं हो रहा और वो कोला कुछ नहीं कर रहा है, उनको बस अपनी चाय पीने से काम है और पता ही कुछ नहीं कि यहाँ क्या हाल हो गया है। इस किस्म के तबसरे भी आपको सुनाई देते हैं। बाद इस किस्म के लोग हैं उसके बरक्स जो बुराइयों को देखते हैं और खामोशी से घर में चले जाते हैं और घर में बैठकर ये बातें करते हैं कि मुआशरा ख़राब हो रहा है और कुछ नहीं, कोई हाल नहीं रहा और लोग गंदे होते चले जा रहे हैं। ये दोनों किस्म के लोग नसीहत के लिहाज से बेकार और बिल्कुल बेमानी हैं। सबसे पहली बात इस ज़मन में सोचने के लायक ये है कि पहले लोगों का भी उन बीमारों से ताल्लुक कट गया क्योंकि वो नफरत का शिकार हो गए और दूसरी किस्म के लोगों का भी उन बीमारों से ताल्लुक कट गया क्योंकि वो इस जिद्दोजहद से अलहदा हो गए और अपने घरों के आराम खानों में वो गोया के बेनियाज होकर बैठ गए कि वहाँ बाजारों में क्या हो रहा है। फिर ऐसे तबसरे भी आपको सुनाई देंगे कि जी ये लोग वहाँ बैठते हैं वहाँ बैठते हैं, मजलिसें लगाते हैं और ऐसे तबसरे भी मालूम सुनाई देंगे कि इनकी मजलिसें तोड़ दी जाएँ, इनको रब्बा से निकाल दिया जाए, इनके साथ ये सलूक किया जाए, इनके साथ वो सलूक किया जाए। हालांकि ऐसे तबसरे करने वाले बसा औकात मुतमव्वल लोग होते हैं, उनके घरों में ऐसी आसाइशें मैसर होती हैं कि वो अपने घरों में मजलिसें लगाते हैं, रातों को देर देर तक बैठते हैं और उनके रिश्तेदार वहाँ इकट्ठे होते हैं, चाय पी जाती हैं, गप्पे मारी जाती हैं, हर किस्म के तबसरे होते हैं। उनको वो अपनी हालत दिखाई नहीं दे रही होती और बाजार में कुछ गरीब नौजवान दिखाई दे रहे होते हैं जो उनके नज़दीक नहायत आवारा और गैर जिम्मेदार और बेराहरौ हैं, उनका कोई हक नहीं कि इकट्ठे बैठे कहीं। गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। मालूम होता है कि ऐसे लोगों को अपनी तबी दिलचस्पियों के लिए कोई निकास की राह नजर नहीं आती। हर इंसान में एक जज्बा होता है किसी तरह वो तस्कीन हासिल करे, लज्जत हासिल करे, अपनी थकावट को दूर करे। अगर किसी के घर में एक कमरा है गरीब के घर में और वहीं उसके माँ बाप और बहन भाई रहते हैं तो अपने घर में बेचारा कैसे मजलिसें लगा सकता है। वो अपने जैसे गरीबों को लेकर बाहर निकलेगा, बाजारों में कहीं बर्फ वाले के पास खड़ा हो जाएगा, कहीं कबाब की दुकान पर, कहीं किसी मिठाई की दुकान पर, फिर वहाँ से गुजरता गुजरते देखेगा औरतों को, लड़कियों को, कुछ बेपर्दा पर्दावादार होंगी, कुछ ने बेहतियाती की होगी, फिर उन पर उसकी नज़रें पड़ेंगी, और उसकी जो तालीम और तरबियत है जो घरों में अमूमन शुरू होती है, उसका पस मंज़र भी आप देखें तो मालूम होगा कि अक्सर उस ऐसे नौजवानों के माँ बाप खुद तरबियत के मोहताज होते हैं, और माशरे की वजह से या इक्तसादी कमजोरियों की वजह से या तो उन्होंने तालीम ही हासिल नहीं की होती, या ऐसे घरों में परवरिश पाई होती है जहाँ करख्तगी रोज़मर्रा की आदत है, खावन की बीवी से बदसलूकी, बीवी की खावन से बदसलूकी, ये रोज़मर्रा वो देख रहे होते हैं। ऐसे घरों में पलने वाले इन बच्चों को आप महज कसूरवार करार देकर रद्द कर दें, और ये समझ लें कि अमूरआमा थानेदार, नादिर अमूरआमा थानेदार बन के हर वक्त इन बच्चों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहेगा, या इनको खुदाम अलहमदिया पकड़ के बदनी सजाएं देगी, या और कई किस्म की इनके खिलाफ ताजीरी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, ये दुरुस्त बात नहीं है। आपकी सोच ही बिगड़ी हुई है इस सूरत में। इस्लाह हमदर्दी और हुसन से पैदा होती है, कुरान करीम ने यह फरमाया है, हुसन के बगैर बुराई दूर नहीं हो सकती। और ये रद्द अमल जिसका मैंने जो मैं जिसकी मिसाल आपके सामने पेश की है, यह हसीन रद्द अमल नहीं है, ये एक जालिम रद्द अमल है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए सबसे पहले तो जो तरबियत के जिम्मेदार हैं उनकी तरबियत जरूरी है, उनको खुद अपनी तरबियत करनी चाहिए, अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, अपने दिल को टटोल कर देखना चाहिए कि इस किस्म के जब वो नज़ारे देखते हैं तो उनके दिल में इन बेचारे नौजवानों के लिए हमदर्दी पैदा होती है या नफरत पैदा होती है। अगर नफरत पैदा होती है तो वो लोग खुद बीमार हैं, इन बेचारों को की क्या इसलाह करेंगे। फिर जब आप देखते हैं कि बाज़ लोग वीडियोज़ लेके जाते हैं हिंदुस्तान के गानों की फिल्में या यूरोप की बाज़ फिल्में और इकट्ठे होकर कहीं देखते हैं तो बाज़ लोगों को आग लग जाती है, किस कदर तबाही फैल गई है, अड्डे बने हुए हैं, अमूरआमा कुछ नहीं कर रही, खुदाम अलहमदिया कुछ नहीं कर रही, अंसारुल्लाह कुछ नहीं कर रहा, सदरान महल्ला बेपरवाह हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनमें से जो मुतमवल हैं उनके घरों में भी टेलीविजन हैं, उनके घरों में भी सहूलतें हैं, उनकी कमज़ोरियों पर मुआशरे की उनकी कमज़ोरियों पर उनके हालात ने पर्दा डाला हुआ है, उनकी इक्तसादी हालत ने पर्दा डाला हुआ है, और वो लोग भी घर में रोज़ाना ऐसी बातें करते हैं और उनसे ज़्यादा करते हैं जिनको कभी महीने में एक दफ़ा कोई वीडियो मिल गई बेचारों को। फिर वो जब लोग गुजर रहे होते हैं गलियों से, कहीं से गाने की आवाज़ आ रही होती है, बाद लोग मुश्तैल हो जाते हैं कि देखो जी यहाँ रब्बा में गाने गाए जा रहे हैं। और बहुत से ऐसे घर भी हैं जहाँ जो इतने वसी हैं कि उनके घरों की गानों की आवाज़ें बाहर नहीं जाती। बहुत से ऐसे घर ऐसे लोग भी हैं जिनको ऐसी नई किस्म की मसनू बिजली की मसनूआत मैसर हैं कि कानों में उसकी एक तार की टूटी दे दी और किसी को भी आवाज़ दी जाएगी, वो अपने आराम से बैठे जो मर्जी सुनते रहें। तो हकीकत पर नज़र रखे बगैर महज तनकीद से इस्लाह नहीं हो सकती। ये ठीक है कि गानों के ऊपर किसी ज़माने में जमात में बहुत सख्ती हुआ करती थी, और बाज़ लोग इनमें से ऐसे हैं जिनको कादियान के वो ज़माने याद आ जाते हैं। वो कहते हैं जी देखो कादियान में फलां जगह गाने की आवाज़ आई थी तो अमूरआमा ने ये काम किया था, उनको घरों से निकाल दिया था, उनकी दुकानें बंद करा दी थी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो कौन सा माहौल था और ये कौन सा माहौल है। वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता सहाबा की नस्लें थीं जिनके वालदैन ने अपने घरों में सवाए तिलावत या पाकीज़ा नज़मों के कुछ भी नहीं सुना हुआ था। उनकी नस्लें जब नरमी इख्तियार कर रही थी तो उससे बहुत अजनबियत पैदा होती थी माहौल में, और जो माहौल दूसरा हिंदुस्तान के माशरे का था वो भी इतना बद नहीं था। اب صورت حال اس سے بالکل مختلف ہے. ان میں سے بہت سے جو نوجوان آج ہمارے شہروں میں یا محلوں میں آباد ہیں, جو احمدی بھی ہیں, ان میں سے بھاری اکثریت ایسی ہے جنہوں نے اعلیٰ بزرگوں کی تربیت حاصل نہیں کی. ربوہ میں بھی ارد گرد سے, صرف ارد گرد سے نہیں بلکہ سارے پاکستان سے, بلکہ اس سے باہر سے بھی بہت سے ایسے لوگ آباد ہوئے ہیں جا کر جن کا اپنا تربیتی پس منظر بہت کمزور ہے. ایسے لوگ جو مشرق افریقہ سے وہاں گئے یا انگلستان سے گئے یا اور دوسرے ملکوں سے گئے, انہوں نے اپنے ماحول میں اس سے بہت زیادہ گانے سنے, رقص و سلوک دیکھے, فلمیں روزمرہ چلتی دیکھیں, اور ان کے نزدیک کی کوئی برائی نہیں تھی. وہ یہ ساری چیزیں نہ صحیح, ان میں سے کچھ چیزیں لے کر ربوہ پہنچ گئے. پھر جیسا کہ میں نے بیان کیا, اقتصادی بدحالی کی وجہ سے بہت سے آراموں سے یہ لوگ محروم ہیں. نہ ان کے گھروں میں پنکھے ہیں, نہ ان کے گھروں میں علیحدہ بیٹھنے کی جگہ ہیں, نہ ان کو اچھا کھانا میسر ہے. ان بیچاروں کی عیاشی کی انتہا یہ ہے کہ اچھا گانا سن لیں, اور جب وہ سنتے ہیں تو آپ لوگ ان کو ایسی غضب کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ تباہ ہو گئے ہیں یہ لوگ, ذلیل لوگ ہیں, انہوں نے ساری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے, اور جماعت احمدیہ کے اوپر داغ لگ گئے ہیں. ان کو زبردستی جس طرح جراح عضو گندے عضو کو کاٹ کے پھینکتا ہے, ان کو کاٹ کر اپنے معاشرے سے الگ کر دو. یہ غیر حقیقی باتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ایک تسنو کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور تسنو کی حالت میں سوچ رہے ہیں. ان سب لوگوں کی مجبوریوں اور تکلیفوں پر نظر رکھنا ضروری ہے. وہ تکلیفیں اصل بیماریاں ہیں, وہ ناداری کی حالتیں اصل بیماریاں ہیں. ان معاملات میں آپ ان سے ہمدردی نہ رکھیں, اور بیچارے اپنے معصومانہ رنگ میں تھوڑا سا بھی اپنے دل کی تسکین کا سامان پیدا کریں تو آپ غیظ و غضب کا شکار ہو جائیں. یہ ہے اصل بیماری روحانی جو آپ کو لاحق ہے. اس لیے سب سے پہلے تو اب اصلاح کرنے والوں کو اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ربوہ میں میں نے اپنی مجلس عاملہ کو کہا, انصار اللہ میں تھا یا غلام اللہ احمدیہ میں, اس غالباً انصار اللہ کی بات ہے, میں نے ان سے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں, لڑکے ہیں بیچارے, جو آوارگی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے متعلق لوگ شکایتیں کرتے ہیں, تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ اپنے میں سے ہم اپنی ذمہ داری یہ کر لیں کہ ہم میں سے ہر ایک یا دو یا تین کو خصوصیت کے ساتھ اپنا دوست بنانے کی کوشش کرے گا, ان سے وہ تعلق رکھے گا, ان کے مسائل سنے گا, ان کے دکھوں کو اپنانے کی کوشش کرے گا, اپنا سکھ ان کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کرے گا, اور دیکھیں تو صحیح کہ پھر کیا نظر آتا ہے. چنانچہ ہم میں سے جس نے بھی اس نصیحت پر عمل کیا اس کی اپنی حالت بدل گئی. بعض نے مجھے بتایا کہ بڑے دردناک حالات ہیں, ہم نے جب ان کے پاس بیٹھے, ان سے چائے پہ بلایا, اول تو وہ حیران رہ گئے کہ ہمیں تو لوگ ہمارے تو لوگ منہ پہ تھوکا کرتے تھے کہ یہ کون خبیث انسان ہے اور یہ اچھا والا موزد شریف آدمی یہ اپنے گھر چائے پہ بلا رہا ہے. کہتے ہیں اسی احسان کے سلوک نے اس کی حالت بدلی. پھر جب اس کے حالات معلوم کیے تو پتہ لگا کہ یہ بہنوں کا حال ہے, یہ فلاں بھائیوں کا حال ہے, ماں باپ کی اس طرح ناچاکی ہے, یہ گھر میں غربت کا ماحول ہے, یہ تنگیاں ہیں. تو بجائے اس کے کہ ایسے شخص سے وہ نفرت کرتے, ان کے لیے ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی, محبت پیدا ہوئی, ان کے لیے کئی ایسے اقدامات کا موقع ملا جو اپنے کمزور بھائی کے لیے ایک اچھا, ایک نسبتاً متمول بھائی کیا کرتا ہے. حسب توفیق ان کی خدمت کی توفیق ملی ان کو. اور بعض ایسے نوجوان تھے جن کے متعلق میری رپورٹیں یہ تھیں کہ یہ اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اس لائق نہیں کہ ان کو ربوہ میں ٹھہرنے دیا جائے. ان کے اندر سے بڑے بڑے پیارے نوجوان پیدا ہونے شروع ہو گئے. بس اصلاح کا جو منبع ہے وہ آپ کا دل ہے. आपके दिल में अगर हुस्न होगा तो आप इसलाह कर सकेंगे। इदफा बिल्लती है आसन हिस्सा ही है, फरमाया है अल्लाह ताला ने। सख्ती के जरिए बदी को रोकने का कहीं कोई हुक्म नहीं मिलता, हाँ हुस्न के जरिए बुराई रोकने का हुक्म है। हजरत अब्दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न की आमाजगाह थे, एक हुस्न का ठाठे मारता हुआ समंदर था जिसके वो खुदा ने यह ताकत वदियत की थी कि हर बदी पर अपनी हुस्न की मौजों के जरिए गालिब आए। बस हमने अगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख इख्तियार करना है तो खैर उमम बनना हमारे मुकद्दर में है, हम लाजिमन खैर उमम बनेंगे और उस सुन्नत की बरकत से हम बुराइयों पर गलबा पा जाएंगे। लेकिन अगर सुन्नत मगरिब की इख्तियार करें या दुनियादारों की इख्तियार करें और दावे ये करें कि हमने बुराइयों का कला कमा करना है तो एक झूठी बात है, एक हमका की जन्नत है जिसमें आप बसते हैं। इसलिए इन चीजों की तरफ हिकमत से तवज्जो करें और मजीद मालूम करें कि वो कौन से अवामिल हैं जो इन नस्लों को तबाह कर रहे हैं, और उन अवामिल को दूर करने या अच्छे अवामिल के जरिए उनको रिप्लेस करने, यानी उनको रफ्ता रफ्ता इस तरह दूर करने की तौफीक पाएं कि अच्छी चीज दें तब बुरी चीज बाहर निकले। खाली बुराइयों को दूर करने का तो कोई तसव्वुर कुरान करीम में नहीं है, खलाओं को भरने का तसव्वुर है, खला पैदा करने का कोई तसव्वुर नहीं, और ना खला हुआ करता है दुनिया में। हकीकत में बदी है वो तब जगह छोड़ेगी अगर कोई और ताकतवर चीज उसकी जगह दाखिल हो जाएगी और उसको धकेल कर बाहर निकाल देगी। और कुरान करीम फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, हुस्न में ये ताकत है और हसीन चीजों में ये ताकत है कि वो बदियों को धकेल कर बाहर निकाल दे। इसलिए आपको ऐसी ताकतवर खूबियां अपने अंदर पैदा करनी होंगी और ऐसे ताकतवर हसीन जराए इख्तियार करने होंगे जिनके जरिए बदियां लाजमन उन जगहों को छोड़ जाए जहां आपका हुस्न दाखिल होना शुरू हो जाए। इस सिलसिले में मैंने कई किस्म के मामलात पर, यानी कई किस्म के बदियों पर गौर किया, मसलन गाना बजाना और इस किस्म की चीजें हैं। आप सारी दुनिया में ये बात देखेंगे, सिर्फ ये मशरक की बात नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं, रब्बा की बात नहीं, कि रफ्ता रफ्ता मजाक बदल रहे हैं और मजाक ज्यादा मादा परस्ती की तरफ मायल हो रहे हैं। एक जमाना था जबकि एक शायर का कलाम एक इंसान के दिल में वो जज्बात अंगेख्त कर दिया करता था जो अब आम नगमे भी नहीं करते, बल्कि उसके लिए पॉप म्यूजिक की जरूरत पेश आती है। मजाक बिगड़े हैं रफ्ता रफ्ता और मादियत की तरफ ज्यादा मैलान होता चला गया है। मजाक अगर लतीफ हो तो एक अच्छा कलाम, एक अच्छा अदब पारा इंसान के दिल में और दिमाग में ऐसे तमवुज पैदा कर देता है कि दुनिया में जो आम म्यूजिक के शैदाई हैं, नगमों के शैदाई हैं, वो उन लज्जतों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए मजाक की सेहत की तरफ और दुरुस्ती की तरफ तवज्जो बहुत जरूरी है। अगर आप जायजा लेंगे पाकिस्तान का मसलन खसूसियत से तो आप वहां भी ये महसूस करेंगे कि पुरानी नस्लों का अदबी मयार बुलंद तर था। जो पहले जमाने के लोग थे या बच्चे पढ़ा करते थे उनके स्कूलों में भी और स्कूलों से बाहर भी एक अदबी ज़ौक शौक की बातें हुआ करती थी, अदबी ज़ौक शौक का माहौल था और शेर व शायरी का माहौल था। वो शेर व शायरी उस जमाने में बाज़ नेक लोगों को बहुत ही बुरी लगा करती थी, वो समझते थे ये लड़के तबाह हो रहे हैं शेर व शायरी की वजह से। लेकिन आज के माहौल में अगर देखें तो वो शेर व शायरी के माहौल में पढ़ने वाले लोग ये पॉप म्यूजिक के पागल शदाइयों को पागल समझते हैं और समझते हैं ये तबाह हो रहे हैं। तो ये निस्बती चीज़ें हैं और इनके अवामिल पर आप गौर करें तो आखिरी तान इस बात पर टूटेगी कि मुआशरे का मजाक बाज मुतालबे करता है। अगर आपने मजाक की इस्लाह न की और मुतालबों की राह में खड़े हो गए तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मजाक बुलंद करें और मजाक के मुतालबे पूरे करें, ये दो चीजें इकट्ठी होना जरूरी है। अब आप यहां इंग्लिस्तान के मुआशरे को देख लें, इसका मुकाबला आज से 40-50 साल पहले से करें तो आपको मालूम होगा कि भारी तादाद अंग्रेजों की उस जमाने में किताबें पढ़ने की आदी होती थी और इनका जो सुकून का तसव्वुर था वो ये था कि शख्स जब वक्त मिलता है किताब लेकर अलग बैठ जाए, और अगर शेरों का शौक है तो शेरों की किताब ले ली, अदब का शौक है तो अदब की, नावल का शौक है तो नावल उठा लिए, लेकिन पढ़ने में लज्जत हासिल करता था। अब एक भारी फीसद तादाद इन लोगों की ऐसी है जो सिर्फ टेलीविजन देखकर लज्जत याबी करती है, और वो लोग जो बाहर नहीं निकल सकते, जो घरों में बैठते हैं, अब वो ज्यादातर पढ़ने की बजाय वो टेलीविजन का स्विच ऑन किया और बैठे नज़ारे देखते रहते हैं। फिर जिस किस्म की तरबियत टेलीविजन उनकी करती है उनकी उसके साथ साथ होती चली जाती है। जो लोग अदबी ज़ौक की परवरिश, अदबी माहौल की पैदावार हैं, उनके दिलों की लज्जत का मुकाबला अगर आप उन लोगों के दिलों की लज्जत से करें जो पॉप म्यूजिक की पैदावार है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि पॉप म्यूजिक वाले ज्यादा लज्जत उठा रहे हैं। लज्जतों की नौयत में फर्क पड़ जाता है, लेकिन जिस किस्म का जौक है उस जौक को पूरा करना ही दरअसल लज्जत है। तो अगर हमारे नस्लें बीमार हो रही हैं तो उनकी उनके मजाक को दुरुस्त करने, उनके जौक को दुरुस्त करने की तरफ तवज्जो बड़ी जरूरी है, और उसके लिए बहुत से इकदाम किए जा सकते हैं। ये कह देना कि वो आप उनके गाने बंद कर देंगे जबरदस्ती और गलियों में आवाजें बंद हो जाएंगी, इससे बीमारी दूर हो जाएगी, ये पागलपन है। बीमार चीखे मारते हुए बीमार के ऊपर आप लिहाफ डाल दें और चीखें आनी बंद हो जाएं, इसको तो इलाज नहीं कहा जाता। तकलीफ दूर करना जरूरी है, इसलिए बेहतर मजाक पैदा करना नहायत अहम काम है। इसके लिए मैंने बहुत से ज़राए सोचे हैं, इनके मुतालिक इंशाल्लाह मैं हदायतें जारी करूंगा। बहरहाल काम ऐसा है जो वक्त चाहता है, लेकिन शुरू बहरहाल होना चाहिए, और ऐसा काम है जिसमें मुआशरे के हर तबके तक पहुंचकर उसके ज़ौक की इस्लाह और बेहतर ज़ौक पैदा करके उसके ज़ौक की तलब को पूरा करने के समान करना, ये दरअसल इस्लाही कार्रवाई है। अब हम शेर व अदब की बात कर रहे थे। एक जमाना था कादियान में, मुझे याद है, जबकि छोटे छोटे बच्चे भी शेरों की कापियां बनाया करते थे, और उस जमाने में गजलें उन कापियों में लिखना या मोहब्बत के अशार लिखना अगर जुर्म नहीं समझा जाता था तो रस्ते से जरा हटी हुई बात जरूर मालूम होती थी। इसलिए ऐसे नौजवान अपनी कापियां बाज दफा छुपा के रखा करते थे कि बुजुर्गों को नजर ना आ जाए कहीं कि हमने क्या लिखा हुआ है। और मुझे याद है एक दफा एक मेरे क्लास में बैठे हुए तालिब इल्म की कापी थी, उसको मैंने उठा के देखा, मेरा ख्याल था शायद उसमें क्लास की बातें होंगी, तो उस पर एक शेर था, उसका एक मिसरा था, शेरों के इंतखाब में रुसवा किया मुझे कि मैं कहाँ पकड़ा जाना था, मुझे लोगों को क्या पता लगता कि मेरे दिल में क्या बातें हैं, लेकिन जो शेरों का इंतखाब मेरा नजर आ गया लोगों को, इसने मुझे रुसवा कर दिया। उस जमाने वो मासूम जमाना था, ये हाल था, लेकिन उन शेरों में भी वो नौजवान इतनी लज्जत पाते थे और शेर उनके जौक की तामीर भी किया करते थे कि उसके नतीजे में सुलझी हुई नस्लें पैदा हुई हैं। پھر وہی ذوق تھا جو تبدیل ہو کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار کی سے لذت حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کر گیا. اگر ادبی ذوق ہی نہیں ہے تو آپ اس کو دوسری طرف اسی قسم کی چیز میں منتقل کر نہیں سکتے. جن کو وہ شعر و شاعری کا شوق ہے وہی پھر آخر اعلیٰ درجے کے لطیف مضامین کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اعلیٰ درجے کے کلام سے لذت یابی کی صلاحیت پت رکھتے ہیں. چنانچہ ایسے نوجوان ہیں جن کو میں نے بچپن میں ہم بہت سے ایسے نوجوانوں کو جانتے تھے جن کا ابتدائی ذوق صرف دنیاوی شاعروں کے کلام تک محدود تھا, لیکن رفتہ رفتہ پھر وہ دینی مضامین کی طرف منتقل ہو گیا, پھر وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قدرت کے شیدائی ہو گئے, آپ کے کلام کے عاشق بن گئے, اور رفتہ رفتہ ان کی کیفیت بدلنی شروع ہوئی. تو سوال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اس زمانے میں جرم دکھائی دیتی تھیں در حقیقت وہ جرم نہیں تھیں بلکہ انسانی فطرت کے ساتھ ایک تعلق رکھنے والی ایسی باتیں تھیں جن کو ہم جدا نہیں کر سکتے. ادب لطیف جس کو کہتے ہیں, اس کے لیے انسانی فطرت میں خدا نے ایک طلب رکھ دی ہے. اگر اس طلب کو آپ پورا نہیں کریں گے اور رستہ بند کریں گے تو پھر یہ کسی اور رخ کو اختیار کرے گی, کوئی اور رستہ اپنا بنائے گی جو اس سے بدتر ہوگا. اس لیے ایک طریق مثلا یہ بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سختی اور تشدد سے فلمی گانوں کے رجحان کو بند کریں, آپ اچھے شعراء کا کلام جو نہایت اعلیٰ درجہ کا طبیعتوں پر اثر کرنے والا کلام ہے اس کو بغیر میوزک کے اچھے گانے والوں کے سے پڑھوا کر ان کے کیسٹس مہیا کریں, اور وہ جو بیچارے کیسٹس بیچنے والے ہیں ان کی روزی کا بھی خیال کریں. ان کو آپ یہ کہہ کر کس طرح گانوں کی فلمیں بھیجنے سے روک سکتے ہیں کہ بہت بری بات ہے, آپ کے لیے تو بری بات ہے, اس نے تو اس سے روٹی بھی کمانی ہے بیچارے نے, اس لیے اس کا بھی تو متبادل انتظام ضروری ہے. اس ذوق کی تسکین کرنے کے لیے کوئی اچھی چیز ہو جو اس برے ذوق سے لوگوں کو روک سکے, تو ایسے ایسے اچھے کلام ہیں کلاسیکل اگر نہیں تو ہمارے موجودہ زمانے میں بھی بڑے بڑے اچھے شعراء پیدا ہوئے, مثلا فیض احمد فیض ہے, احمد فراز ہیں, احمد ندیم قاسمی بھی بہت اچھا کہنے والے ہیں. ان کی مختلف قسم کی نظمیں ہیں, کچھ معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے نظمیں ایسی کہی ہیں جو بظاہر عشق کی باتوں سے شروع ہوتی ہیں اور بالآخر وہ معاشرتی برائیوں کے تجزیے پر جا کر ختم ہوتی ہیں, اور بڑے بااثر کلام ہے. محمد الدین تاثیر ہوا کرتے تھے, ان کا بہت اعلیٰ درجے کا کلام تھا, بہت اچھی اچھی نظمیں ہیں. اور اس دور کے شعراء میں بالعموم آپ یہ دیکھیں گے کہ محبت اور عشق کی باتیں سمودی گئی ہیں معاشرتی حالات کے ساتھ, اور کسی نہ کسی رنگ میں اصلاحی اثر رکھتے ہیں. تو ان کی نظمیں ہیں, ان کو ان کی ریکارڈنگ کر کے اگر مہیا کریں اور نوجوانوں میں یہ شوق پیدا کریں کہ فلمی گانوں کی بجائے ان کی طرف متوجہ ہوں, اور اس قسم کی اور بہت سی باتیں ہیں جن کے تفصیل میں یہاں جانے کا وقت نہیں ہے, مگر میرا مطلب یہ ہے کہ تعمیری کام ہے. تخریب کو آپ تخریب کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے, تخریب کو تعمیری پروگراموں کے ذریعے آپ ختم کر سکتے ہیں. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو اچھی آواز میں بھروا کر اس کو بھی عام مہیا کرنا, ایسی ادبی مجالس بنانا جہاں ان نوجوانوں کو بلایا جائے, بجائے اس کے کہ ریسٹوراں میں بیٹھ کر وقت ضائع کریں, ان کو وہاں اگر چائے بھی مہیا کر دی جائے تو شوق سے آئیں گے, وہاں ان کو علم و ادب کی مجالس کا ذوق پیدا کیا جائے, ان کے اندر علم و ادب کی مجالس کا ذوق پیدا کیا جائے, رفتہ رفتہ دین کی طرف متوجہ کیا جائے. پھر جہاں تک ویڈیوز کا تعلق ہے, آپ جانتے ہیں کہ مغرب میں ایسی اعلیٰ درجے کی سائنسی اور معلوماتی ویڈیوز مہیا ہوتی ہیں कि जिनका जिनको देखना यूं महसूस नहीं होता कि इंसान कुछ पढ़ाई कर रहा है या मेहनत कर रहा है, बल्कि इल्म इस तरह आपके दिमाग दिल में दाखिल हो रहा होता है जैसे आप एक प्यासे आदमी को कोई बहुत ही अच्छा ठंडा मीठा मशरूब मिलता हो, इसके साथ उन्होंने लज्जत शामिल कर दी। इन कौमों की जो खराबियां हैं उन खराबियों से भी बाज़ दफ़ा हुस्न पैदा हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अय्याशी के आदी बना लिया है, इसलिए ये राज समझ गए हैं कि जब तक किसी चीज़ में लज्जत ना हो उस वक्त तक हमारे नौजवान उसको हासिल नहीं करेंगे। चुनाचे इन्होंने इल्म को भी सजा कर पेश करना शुरू किया हुआ है। ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम अब देखें, वो सारे प्रोग्राम वैसे तालीमी और तदरीसी हैं मगर नहायत दिलचस्प, और सवाए इसके कि वक्त की मजबूरी हो एक दफ़ा इंसान उसको शुरू कर दे तो छोड़ने को दिल नहीं चाहता। तो रबवा को या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बसने वाले अहमदियों को इनकी तरफ क्यों मायल नहीं करते? जमात निज़ाम जमात का काम है ऐसी चीज़ें बाहर से मंगवाए, सारी दुनिया में जमात मौजूद है, अगर जापान में मुहैया होती हैं तो उसके तर्जमे करवा कर डबिंग करवाई जाए और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसी मुहैया की जाएँ जो किराए पर लेते हैं, आप मुफ्त नहीं दे सकते तो कम किराए पर उनको दे सकते हैं, या ऐसे मराकज कायम कर सकते हैं जहां कई कई घंटे रोजाना शाम को या दोपहर को या छुट्टियों में दिन भर ऐसे प्रोग्राम चल रहे हों और नौजवान आएँ और बगैर किसी खर्च के आकर बैठ के उनसे लज़्ज़त याब हों, वहां ऐसे असातिज़ा भी हों जो समझाएं कि ये क्या हो रहा है। मसलन ये जो फिल्में हैं समंदर की ज़िंदगी की और परिंदों की ज़िंदगी, हैवानात की मुख्तलिफ शक्लें, एकोसिस्टम है दुनिया में वो किस तरह चल रहा है, कायनात क्या चीज़ है, इन सब उमूर पर इतनी दिलचस्प वीडियोस मौजूद हैं कि अगर आप ये जायज़ा लें तो आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ये इल्मी वीडियोस जो पॉप म्यूजिक की वीडियोस हैं उनसे ज़्यादा दुनिया में फरोख्त हुई हैं। अब कार्ल सागोन हैं, इन्होंने यूनिवर्स के ऊपर फिल्में बनाई थी, एक ये नोबेल लॉरिएट बड़े भारी साइंसदान हैं, इनकी मदद से किसी वीडियो कंपनी ने वीडियोस बनाई और उन्होंने बेस्ट सेलर्स का सारी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसलिए नहीं कि लोगों को इल्म का शौक था ज़्यादा, इसलिए कि नहायत ही दिलचस्प तरीक पर वो मालूमात पेश की गई थी, और देखते देखते वो कार्ल सागोन भी दुनिया लखू खा डॉलर या शायद इससे भी ज़्यादा कमा गए, जो उनका खफीफ सा हिस्सा था इसमें। तो अकल से काम लेना चाहिए, लज्जत पाने की ख्वाहिश को कुचल कर किस तरह आप बदियों को दूर कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ये खुदा से टकराने वाली बात है, खुदा ने फितरत में जो तमन्नाएं पैदा की हैं कोई दुनिया की ताकत उनको कुचल नहीं सकती, कोई उनको जड़ों से उखेड़ के नहीं फेंक सकती। उन तमन्नाओं का रुख बदला जा सकता है, उन तमन्नाओं का जौक तब्दील किया जा सकता है, बेहतर जौक उनको अता किया जा सकता है, और जब आप बेहतर जौक अता करते हैं तो उसके लिए जो लवाजमात हैं वो पूरे करने होंगे। तो ऐसी इल्मी मजालिस को फ़रूग दिया जा सकता है। पुराने ज़माने में मजालिस इरशाद हुआ करती थी कादियान में, और बड़े ज़ौक शौक से साथ लोग मस्जिद मुबारक में होती थी तो सारे इर्द गिर्द के महलों से इकट्ठे हुआ करते थे, मस्जिद अक्सा में होती थी तो वहाँ बड़े जोश के ज़ौक के साथ लोग जाया करते थे, और वहाँ सिर्फ दिलचस्प तकरीरें, दिलचस्प मालूमाती तकरीरें या नज़में वगैरह पढ़ी जाती थी। आज अगर जलसों पर लोगों को आप बुलाएं तो लोग हाजिर ही नहीं होते। वजह यह है कि उस ज़माने में ये ज़ौक था कि इन चीज़ों से लोग लज़्ज़त हासिल कर सकते थे, अब वो ज़ौक मिट चुके हैं और क्रूड हो गए हैं, यानी वो ऐसी उनकी सतह नीचे हो गई है, ज़मीन के करीब तर हो गए हैं बजाय आसमान की तरफ बुलंद होने के। इस पहलू से और भी बहुत से प्रोग्राम हैं मगर वक्त की रियायत से मैं उनकी तफासील आपके सामने नहीं रखना चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इंतज़ामिया को ऐसी हिदायतें जारी की जाएंगी आखिरी बात फिर मैं यही कहूंगा कि दिल गुदाख्ता पैदा किए बगैर, वो दिल जो गैर की तकलीफ महसूस करता है, उसके बगैर आप मुआशरे की इस्लाह नहीं कर सकते। और ये दिल गुदाख्ता अपनों और गैरों में फर्क नहीं किया करता। आप सिर्फ अपनों के लिए दिल में इन बातों का दुख महसूस ना करें, बल्कि गैरों के लिए भी करें। इन नौजवानों को जिनकी आप इस्लाह करते हैं, इनको साथ लेकर कभी निकलें और दूसरे सोसाइटी के दुख हुए हिस्सों का जाकर इनको नज़ारा करवाएं, उनकी खिदमत का जज्बा इनके अंदर पैदा करें। यह भी एक नहायत आला दर्जे की लज्जत है। जिसको ये रौक अता हो जाए, वो बाज दफा बाकी सब लज्जतों से बेनियाज हो जाया करता है। इसलिए बड़ी हिकमत के साथ रफ्ता रफ्ता आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे। ये वो लोग हैं जो आइंदा अहमदियत का मुस्तकबिल है। इनको नफरत की निगाह से देखकर जाया ना करें, इनको गम और दुख की निगाह से देखें, इनको प्यार की नजर से देखें, इनको अपने साथ लगाने की कोशिश करें। फिर वो लोग जहां जो इनको अड्डे मुहैया करते हैं, उनसे मिलें, उनको आंखों में आंखें डालकर समझाएं, उनको बताएं कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे, इनको इनके बिगड़े हुए मिजाजों की इस्लाह की तरफ तवज्जो करो, बजाय इसके कि इनके बिगड़े हुए मिजाजों को बदतर करने में इनकी मदद करो। बस ये सारे अमूर ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक मुझे यकीन है कि जमात अहमदिया बुनियादी तौर पर सलाहियत रखती है अल्लाह ताला के फजल के साथ। इसलिए कि हम जो कुछ करते हैं खुदा की खातिर करते हैं, और जब हम हमारी नीयतें खुदा की खातिर हैं, हम वाकईतन नेकी को पनपता देखना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, इसको नशोनुमा देना चाहते हैं और नीयतें हमारी साफ हैं, तो फिर दुआ के जरिए, हिकमत के जरिए, सब्र के जरिए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह ताला के फजल से हमें इसकी ज़रूर तौफीक मिलेगी। मैंने बार बार रब्बा के हवाले दिए हैं इस वजह से कि रब्बा की दूरी की वजह से मुझे शदीद फिक्र रहती है कि रब्बा में क्या हो रहा है। इसलिए कि अगरचे मरकज़ बज़ाहिर मरकज़ फिल हकीकत तो खलीफा वक्त के साथ ही घूमता है, लेकिन जो इंतज़ामिया मरकज़ है वो बाहर रब्बा में है। रब्बा के ऊपर अगर खुदा न खास्ता बुराइयों ने हमला कर दिया और वहाँ की हमारी नौजवान नस्लें ख़राब हुई, तो इसका सारी दुनिया की अहमदी जमातों पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए बहुत ही अहमियत रखता है ये मुकाम, ख़ास तौर पर बार बार मैंने उसका जिक्र इसलिए किया। मगर ये मुराद नहीं है कि इंग्लिस्तान की जमात इन बुराइयों से महफूज है, या जर्मनी की जमात इन बुराइयों से महफूज है, या अमरीका की जमात इन बुराइयों से महफूज है। वहाँ ये बुराइयाँ जितनी रब्बा में पाई जाती हैं, इससे ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन अगर रब्बा वाली बुराइयाँ सिर्फ यहाँ पाई जाएं तो आपको बुराई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आप दूसरे माशरे में रह रहे हैं। यहाँ आप समझेंगे बड़ा ही शरीफ नौजवान है, वो सिर्फ गाने सुनता है, बाहर नहीं निकलता, डांस करने नहीं जाता, शराब नहीं पीता, वो और कई किस्म के बद काम नहीं कर रहा, ड्रग का आदि नहीं है, तो आप तो उसको एक बड़ा मुत्तकी और बुजुर्ग समझ रहे होंगे। जिस बेचारे को वहाँ नहायत ही जलील और रुस्वा और गंदा इंसान समझा जाता है, तो माशरे के फ़र्क के साथ बुराइयों के तसव्वुर भी बदल जाते हैं। आपको और किस्म के खतरात हैं, अमेरिका को और किस्म के खतरात हैं, हर मुल्क में ये खतरात बाहर हाल हैं, और सारी दुनिया की जमातों की इंतज़ामिया को इन खतरात का तज़िया करके हस्बे हाल मुनासिब कार्रवाइयों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। इन सारे उमूर के साथ दुआ को हमेशा याद रखें। मैं फिर भी याद कराऊंगा, खसूसियत से इसका जिक्र आपसे भी करूंगा, लेकिन ये याद रखें कि हमारी कोई कोशिश भी बरकत हासिल नहीं कर सकती जब तक दुआ के जरिए हम इन कोशिशों को सैराब न करें। हमारी कोशिशें शजरे तैयबा हैं और हर दरख्त पानी का मोहताज हुआ करता है। शजरे तैयबा खसूसियत के साथ आसमानी पानी का मोहताज होता है, जो दुआ के जरिए मुयसर आया करता है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि इस अजीम जिद्दोजहद का हम हक अदा कर सकें। अभी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आइंदा खुतबे में जिस तब आइंदा खुतबे में तो नहीं, अगले आइंदा खुतबे में तो तहरीक जदीद का जिक्र होगा खसूसियत के साथ, उसके बाद इंशाल्लाह हसब तौफीक इस मज़मून को आगे बढ़ाकर आपको ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि अगली सदी जिसमें हमने दाखिल होना है उसमें दिन बहुत थोड़े रह गए हैं और काम हमें बहुत ज़्यादा करने हैं। बहुत सी ऐसी बुराइयां हैं जो अभी तक हमारे साथ चिमटी हुई हैं, उनको जिस्म से उतार फेंके बगैर, अपने आप को हल्का किए बगैर, साफ सुथरा और पाकीज़ा बनाए बगैर अगर हम अगली सदी में दाखिल होंगे तो फिर अगली सदी की के परले किनारे पर जो बुराइयां ज़ाहिर होंगी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि इस अजीम काम का हक अदा कर सकें। नमाजें जमा होंगी और जब तक सर्दियों के अवकात हैं जिनमें जुमे के वक्त का अख्तिताम असर से मिल जाता है उस वक्त तक जुमे के साथ हसब साबिक नमाज असर जमा हुआ करेगी, बार बार इसके ऐलान की ज़रूरत नहीं। जब ये सिलसिला ख़त्म होगा फिर मैं दोबारा ऐलान कर दूंगा कि अब असर की नमाज आइंदा से जुमे से अलग हुआ करेगी। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر